जा सकता था,
क्योंकि
अगर हवा में 22 मिनट्स तक हैं तो इट मीन्स कि वो तजर्बा ही कर रहे थे कि इसको किधर किधर लेके हम जाएं तो ये कहीं पे भी जा सकता था। अच्छा जी, ब्लूमबर्ग की आज फिर एक रिपोर्ट आई है एंड दिस वाज द ब्रेकिंग न्यूज, जो कि अगर आपने हमारी वेबसाइट अगर फॉलो करते हैं तो आपने जरूर देखी होगी। फाइनली एलॉन मस्क जो है ही हैज अग्रीड टू बाय ट्विटर, और इसके साथ ही जो बड़ी ही वॉलेटाइल हो गए थे इसके शेयर्स ट्विटर के, वो आज फिर से उसको संभाला मिला है, और इनका जो ट्विटर का जो मार्केट जो थी वो फिर से जंप कर गई है 6.7% पे। और उन्होंने कहा जी कि जो ओरिजिनल मैंने अपनी ऑफर दी थी 54.20 पर शेयर खरीदने की, डॉलर्स पर शेयर खरीदने की, उसी पे मैं लूंगा, और ये जो अमाउंट थी टोटल 44 बिलियन US डॉलर्स थी, तो ये एग्री कर गए हैं उसको लेने के
फिर
लिए।
कहा है, फिर वापस आ जाएंगे,
हाँ फिर आ जाएंगे, फिर कहेंगे कि ये तो ट्विटर ने किया नहीं है ठीक से है। तो फिर बहरहाल जी आज इन्होंने फिर से अब अनाउंस किया, तो अब फिर देखेंगे। अच्छा जनाब, साढ़े तो मुल्क में भी जो हो रही मसले पे हुए, इमरान खान गद्दार है, पीटीआई कहती है जी वो दूसरे गद्दार हैं, फलाने ठीक नहीं है, ये है वो है, और दुनिया देखो किस तरफ चल रही है। यानी मुझे बड़ी हैरत होती है कि हमारे लोगों में कॉम्पिटिशन इस चीज के लिए क्यों नहीं है कि यार एक पाकिस्तान में सिर्फ एक ही नोबेल प्राइज विनर आया था, उसके बाद कभी पाकिस्तान के किसी बच्चे ने नोबेल प्राइज नहीं जीता। तो हमको अपनी एनर्जीज उस तरफ लगानी चाहिए, चाहे कोई गोरा है, चाहे काला है, हिंदू है, सिख है, जो भी है, उस बच्चे को ग्रूम करें अगर वो इतना काबिल है कि वो एक पाकिस्तान के लिए नोबेल प्राइज लेकर आए। नहीं जी, ऐसी तो कोई वहां पर है नहीं। उत्थे दे आए, तू रोटी ज्यादा क्यों खाई है, तेरे को मकान ज्यादा क्यों ने, तू लंडन के फ्लैट क्यों लिया है, तू इतने जमीन का कब्जा क्यों लिया, बस ये इस चक्कर में है। तो ये जनाब पिछले एक दिन से कॉन्स्टेंटली ये खबरें आ रही हैं नोबेल प्राइज विनर्स की। कल खबर आई थी स्वीडिश साइंटिस्ट जो हैं स्वेंते पैबो, इन्होंने जीता है 2022 का नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी, और वो कहते हैं जी कि ये एब्सोल्यूटली इम्पॉसिबल था जो कि इन्होंने जीनोम सीक्वेंसी की है नेदरथॉल की, जो कि एक्सटिंक्ट एक स्पीशी है ह्यूमंस की तरह की, जैसे कि आज ह्यूमंस थे उनकी तरह की, जो कि लगता था कि ये ह्यूमनिन्स जो हैं इनको इनकी अब एवोल्यूशन हो ही नहीं सकती, और इनको इनकी जीनोम डिस्कवरी इन्होंने करके सीक्वेंसिंग की है जो कि उनको दिया गया। आज जनाब और कुछ साइंटिस्ट जो हैं एलन एस्पेक, जॉन क्लॉसर, एंटॉन जिलिंगर, इनको जनाब फिजिक्स के लिए जो है वो दिया गया है नोबेल प्राइज, और इन्होंने एस्टैब्लिश किया है बेल इन इक्वालिटीज जो के जो हैं उनसे मिलती हैं क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस से, जिसका के काम कभी उसने करने की कोशिश की थी आइंस्टाइन ने भी। तो दे हैव टेकन इट वन स्टेप फर्दर, और आपको पता ही है 100 ईयर ओल्ड ये है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज नोबेल प्राइज वाले, तो अब इनको जो है दिया जाएगा तकरीबन 902,315 US डॉलर्स जो है इनको प्राइज मनी में दिया जाएगा।
Right.
तो जनाब ये देखें जरा किस तरफ दुनिया किस तरफ चल रही है, तेसी जड़ा है किस तरफ, और आई एम 100% श्योर, मैं इनके बारे में कल इनकी हिस्ट्रीज में पढ़ूंगी इंशाल्लाह, आई एम 100% श्योर इनके जो नाम शो करते हैं ना डेफिनेटली दे आर ऑल ज्यूज, आई एम 100% श्योर, लेकिन फिर भी मैं कल ये इनकी हिस्ट्रीज जो है वो पढ़ूंगी और फिर आपके साथ बताऊंगी। अच्छा जनाब, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के अंदर आज बहुत ही कड़ा दिन था, क्योंकि पूरे का पूरा बांग्लादेश इंक्लूडिंग ढाका पूरे अंधेरे में डूबा हुआ है। उसकी वजह यह है कि यहां पर जो पावर डेवलपमेंट बोर्ड जो है, जो कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड्स जो है वो मैनेज करता है, उनके स्पोक्स पर्सन शमीम एसन कह रहे थे कि पूरी तरह से ग्रिड के अंदर फेलियर आया है, और इसलिए ये वाइड स्प्रेड ब्लैकआउट्स जो हैं यहां पे फिरे हैं। वो कहते हैं जी कि ग्लिचेस की वजह क्या है अभी तक हमें पता नहीं चल सका, क्योंकि इंजीनियर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो पावर शॉर्टेज है ये पहले से ही इसकी शिकायतें आ रही थी, क्योंकि ज्यादातर हम जो है डीजल रन पावर प्लांट्स रन करते हैं जो कि 6% पावर जनरेशन काम करते हैं, यानी कि 1500 के करीब मेगावाट के करीब ये बिजली बनाते हैं। तो अब इसको हम कह रहे हैं कि इसकी, क्योंकि अब डीजल की प्राइस बेतहाशा ऊपर चली गई है, तो रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट को हम दूसरी चीजों पे इसको लेके जाना चाहते हैं पावर जनरेशन को, लेकिन उसके अंदर फिर ये शटडाउन कैसे आया है उसका अभी तक पता नहीं चला है। मीनवाइल फारूक हसन, प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन के जो हैं वो कहते हैं जी कि ये हमें जो आपको पता ही है कि ये हमारी गारमेंट फैक्ट्रीज जो हैं सारी दुनिया के अंदर गारमेंट्स बना बना के भेज रही हैं, और बड़ी सक्सेसफुली हमने इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क था उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन अब 4 से लेकर 10 घंटे पर डे की पावर शटडाउन आ जाती है, और उसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलें जो हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा ही मजे का एक सर्वे आया है जी, सी वोटर और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च वालों ने ये पूछा है और उन्होंने कहा जी कि 75 इयर्स हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन को, तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन ठीक थी कि नहीं थी। अकॉर्डिंग टू सी वोटर एंड सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च 46% इंडियंस ने कहा कि इंडिया का जो पार्टीशन था उस वक्त के लिहाज से ठीक था। 44% ने जो है इवन इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी डिवीजन जो है उसको भी सपोर्ट किया, लेकिन जो लोग वेस्ट इंडिया में थे जैसे कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान और गोवा में, वो बहुत ही क्रिटिकल थे पार्टीशन के लिए। उन्होंने कहा जी कि ये पार्टीशन नहीं होना चाहिए था और अभी भी अगर कोई भी एफर्ट्स होंगी री यूनिफिकेशन की तो हम इंडिया की गवर्नमेंट के साथ खड़े रहेंगे। इसमें जो 30% थे अबव 55 उन्होंने पार्टीशन को सपोर्ट किया था, जाहिर है कि वो ओल्डर जनरेशन है और पुरानी पीढ़ी है, लेकिन 57% जो हैं उन्होंने इसको बिल्कुल ही गलत कहा। उन्होंने कहा जी कि इसकी डिवीजन जो है हिंदुस्तान की ये बिल्कुल ठीक नहीं थी इंडिया और पाकिस्तान में और इनको एक ही मुल्क रहना चाहिए था। और 1/3 ऑफ रिस्पोंडेंट्स जो थे उन्होंने ये भी कहा इस मौके पे कि जी हम समझते हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करेगी। 26% ने कहा कि नहीं वो पहले से बुरी हो जाएगी। और माइनॉरिटीज जो थे जिसमें कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और सिख्स थे, वो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में काफी पेसिमिस्टिक थे। इसमें जो 53% मुस्लिम्स थे उन्होंने कहा कि नहीं आने वाले दिनों में और भी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो खराब नजर आएगी। हिंदुस्तान के अंदर जी एक और बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है एंड दिस टाइम इट इज द रिक्रूटमेंट स्कैम। और इसके अंदर जो है उत्तराखंड की गवर्नमेंट जो है उसको बहुत ज्यादा ब्लेम किया गया है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग पुलिस एंड सिविल सर्विसेज में बहुत ज्यादा जो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने ना सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि यूपी के अंदर भी अपने रिलेटिव्स को बहुत ज्यादा फेवर किया ये बड़ी बड़ी जॉब्स लेने के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि इसकी पूरी मुझे रिपोर्ट दी जाए और पुष्कर सिंह धामी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं यहां पे बीजेपी लेड गवर्नमेंट के उत्तराखंड में, उनको कहा है उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने कि पूरी रिपोर्ट जो है मुझे हमें बताई जाए कुछ दिनों में। इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने फिर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है और उन्होंने कहा जी कि इसके बारे में पता कराएं। मीनवाइल जो कांग्रेस के डेप्यूटी लीडर हैं असेंबली के अंदर भुवन चंद्रा कपरी, उनका कहना है, उन्होंने एक पिटीशन भी डाली है हाईकोर्ट के अंदर कि ये सारे का सारा प्रोग्राम जो प्रोब है ये स्टेट गवर्नमेंट को मत दिया जाए, ये सीबीआई को दिया जाए। वो कहते हैं जी कि ये क्या मजाक है, ये तो मजाक है ना कि अब उत्तराखंड और यूपी की गवर्नमेंट जो है उन्होंने उनके ब्यूरोक्रेट्स और अगर पॉलिटिशियंस ने अपने ही रिश्तेदारों को दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट को ही आप कह रहे हैं प्रूव करने के लिए, तो वो अपने रिश्तेदारों के ऊपर तो कवर अप करेंगे स्टोरी सारी को, तो इसलिए सीबीआई की प्रूव की जाए ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन से पॉलिटिशियंस। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि अलेजली बहुत बड़े बड़े नाम इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं सारे स्कैम के अंदर। और उन्होंने तो यहां तक इल्जाम लगाया कपरी साहब ने, उन्होंने कहा जी कि मुझे तो लगता है कि चीफ मिनिस्टर साहब भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और उनके मिनिस्टर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर स्कैम में।
तो ये इज इट ये कोई
अनयूजुअल बात तो नहीं है?
हाँ
तो मतलब इनको बड़ी अनयूजुअल लग रही है,
इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है?
हाँ ये बहुत इतना भड़क रहे हैं, वही मैं कह रही थी कपरी साहब ठंडा पानी पियो, क्यों
हो गया? पाकिस्तान में भी होता है?
हाँ इंडिया पाकिस्तान में तो होता ही है,
होता ही है। तो मतलब
इतना भड़क क्यों रहे हो तुसी?
इतनी कोई ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं है ना?
हाँ लेकिन कांग्रेस ने बंदियां नहीं ना मिली होगी तो इस वजह से वो भड़क रहे हैं ना भाई, गल समझा करो ना माजिद भाई, अंदर की खबरें आपको समझ में नहीं आती हैं, समझा करो। अच्छा जनाब, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है उसने अब एक रेप्स जो होते हैं इंडिया में उसके ऊपर एक रिपोर्ट लेकर आए हैं और उन्होंने कहा है जी कि पंजाब का जो चंडीगढ़ है उसमें हाईएस्ट रेट ऑफ रेप्स है इन द कंट्री। वो कहते हैं जी कि 2019 में यहां पे 102 रेप्स जो थे वो किए गए थे, विच शोज 20.7% ऑफ द होल ऑफ इंडिया। इसके अलावा फॉलोड बाय राजस्थान 15.9%, दिल्ली 13.5%, 65% ऑफ 112 जो रेप विक्टिम्स थे वो 18 ईयर से कम एज थी, 4 जो थे वो तो 6 साल से भी छोटी बच्चियां थी, और 9 जो बच्चियां थीं 6 से 12 साल उनकी उम्र थी, 31 जो थीं वो 12 साल से 16 साल की उम्र के बीच में थीं, 21 जो बच्चियां थीं 16 से 18 के बीच में थीं। और वो कहते हैं जी ज्यादातर ये जो ऑफेंडर्स थे इनको बच्चियां जो हैं वो जानती थीं, 16 उनमें से फैमिली मेंबर्स थे, 49 जो थे फैमिली फ्रेंड्स थे, नेबर्स थे, एम्प्लॉयर्स थे, एक्वेंटेंसेस थे, 37 ऑफेंडर्स थे जो थे उनके साथ दोस्तियां बच्चियों ने की थी सोशल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर। और इसके अलावा वो कहते हैं जी कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो भी बेतहाशा ऊपर चले गए हैं, और सैकड़ों ही जो है इसमें, जैसे 453 रिपोर्ट थे, रिपोर्ट किए गए थे 2017 में, 442 इन 2018, 515 इन 2019, 66 इंसिडेंट्स ऑफ असॉल्ट एंड मेनी अदर केसेस अगेंस्ट माइनर्स. लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, वो कहते हैं जी ये 2-4-500 वाली फिगर जो है ये गवर्नमेंट की है और ये बिल्कुल झूठ है. हिंदुस्तान के अंदर हजारों ही बच्चियां रेप होती हैं लेकिन उनका डाटा जो है ना तो वो कंपाइल किया जाता है और ना ही उनके बारे में
रिपोर्टिंग ही नहीं होती,
और क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग ही नहीं होती. अब रिपोर्टिंग नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा. यानी 100 पूरे हिंदुस्तान में 112 केसेस हुए हैं, यानी चंडीगढ़ के अंदर सिर्फ जो है, तो बाकी स्टेट्स में क्या हुए हैं, कितने हुए हैं, वो तो आप बता नहीं. तो मतलब इस तरह से काफी उसके ऊपर आज इतराज आया. अच्छा जनाब, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि गूगल जो है, गूगल अब अपना स्टार्टअप एक्सेलेटर सर्कुलर इकोनॉमी जो है एक सेंटर खोल रहा है. इसमें वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको सिलेक्ट करेगा, यहां पर टेक्निकल उनको एक्सपर्टीज देगा ताकि ये रिसाइकल, रीफिलिंग, कंपोस्टिंग, फैशन, फूड्स, सेफ एंड सर्कुलर मटेरियल से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं एंड बिल्ड सेफ एनवायरमेंट, उनके प्रोग्राम्स जो हैं इनको सिखाएंगे. और ये 10 वीक्स की वर्चुअल ट्रेनिंग इनको दी जाएगी जिसके के अंदर गूगल के टॉप एक्सपर्ट्स जो है, टेक्निकल असिस्टेंट्स जो हैं वो शामिल होंगे, गूगल के इंजीनियर्स होंगे, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होंगे जो कि पाकिस्तान के अंदर बच्चों को ये सारी ट्रेनिंग्स देंगे. लेकिन सिर्फ वो एनजीओज और स्टार्टअप्स जिनको कि ये सिलेक्ट करेंगे उनके लोगों को ये दी जाएगी और उससे जो है कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर काफी सुधार आएगा. प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो अभी लीक हुई थी वीडियोस उसके बारे में बात करते हुए कहा कि इमरान खान इज द बिगेस्ट लायर. वो बड़े जो है इन पे आज फिर से भड़के हुए थे. वो कह रहे थे कि ये सोसाइटी के अंदर पॉइजन इंजेक्ट कर रहा है इमरान खान, इसको मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं है, इसकी हरकतों की वजह से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर्स जो है उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है, ये सारा कुछ अपने मीन पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, इसको पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंतहाई इनएक्सपीरियंस, सेल्फ सेंटर्ड, ईगोइस्टिक, इमेच्योर पॉलिटिशियन इन द हिस्ट्री ऑफ कंट्री है. और वो कहते हैं जी मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, मैं जब यूएनजीए के साइड लाइन्स पे लीडर से मिला तो उन्होंने कहा कि इमरान खान इंतहाई रूड आदमी है, झूठ बोलता है और नार्सिस्ट है. तो ये जनाब आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के बारे में कहा है. अच्छा जी, तो पायन फिर मुल्क में सुधार कैसे आ रहा था अगर ऐसी बात थी. अच्छा जी, और वो सारी जो कॉन्फ्रेंस इन्होंने कराई थी तो उसमें कैसे दुनिया सारी के लीडर आए थे. खैर एनीवेज, अच्छा जनाब आज जो पीटीआई के लीडर हैं फैसल वाडवा, उनको कुछ उम्मीद की नजर आई है क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतियाब बंदियाल हैं उन्होंने कहा है कि ये जो आर्टिकल 62(1)(f) है जिस जो के कहता है कि जो बंदा लॉ मेकर सही काम नहीं कर रहा या करप्ट है या उसके खिलाफ केसेस है उसको लाइफ टाइम डिसक्वालिफिकेशन उसकी की जाए, उसको आज इन्होंने कहा है कि ये ड्रेकोनियन लॉ है. 3 जजेस बेंच जिसको के हेड कर रहे थे बंदियाल साहब, उन्होंने कहा कि वाडा साहब ने जो अपील डाली थी कि ये मेरी जो डिसक्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है इसको सुने, तो बंदियाल साहब ने कहा हम बिल्कुल आपकी अपील जो है उसको केयरफुली सुनेंगे, डिटेल्स में सुनेंगे. वसीम सज्जाद जो कि वाडवा साहब के काउंसिल हैं उन्होंने कहा जी कि इन्होंने जब अपने इलेक्शन किए थे 2018 में तो उसके 2 साल के बाद जो है इनकी डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन जो थी वो डाली गई थी और उसमें फॉल्स एविडेविट जो था वो दिया गया था और जो कि ठीक नहीं है, ये सारे एलिगेशंस हैं. चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये सारी चीजें कौन सामने लाया, तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लाए थे. चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वैसे इन्वेस्टिगेट कर सकता है लेकिन हम आपकी बात भी केयरफुली सुनेंगे. अब हियरिंग जो है वो अक्टूबर 6 तक के लिए एडजर्न की गई है और उसके बाद ये फिर से किया जाएगा. इस्लामाबाद के अंदर बहुत दिनों से जी फार्मर्स जो हैं उन्होंने सिट इन दिया हुआ था और वो कह रहे थे कि हमारे साथ जो कुछ फेडरल गवर्नमेंट कर रही है वो ठीक नहीं है. आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से मैसेज लाते हुए इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह ने कहा कि हम आपके तमाम मसाइल जो हैं वो हल करेंगे. आज उन्होंने कहा कि अगर फार्मर जो है उसकी हालत अच्छी नहीं है तो मुल्क की हालत भी अच्छी नहीं हो सकती. प्रॉस्परस फार्मर्स होंगे तो मुल्क भी प्रॉस्परस होएगा. और उन्होंने कहा जी कि आप सब लोग वापस चले जाएं, आपकी तमाम डील्स जो हैं और बातें जो हैं वो हम मानने को तैयार हैं. फार्मर्स ने बेसिकली कहा था कि हमारे जो हैं वो एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं उसको, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं उनको आप करें, पुरानी पेमेंट के ऊपर लेकर आएं और हमें जो हैं बिल्स के ऊपर डेफर्ड पेमेंट्स दें. तो किसान इत्तेहाद के अंडर ये मोर्चा जो था वो निकाला गया था. बहरहाल आज जब हुकूमत के साथ बात हो गई तो तमाम फार्मर्स जो हैं इस्लामाबाद से वापस चले गए हैं. पंजाब की से आए थे ये ज्यादातर जो फार्मर्स, उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इनके टैक्सेस जो हैं वो बिल्कुल माफ कर रहे हैं. और इसके अलावा जो प्रीवियस ट्यूब वेल इलेक्ट्रिसिटी रेट था वही अब हम लगा रहे हैं जो कि बहुत बढ़ा दिया गया था. तो वो पुराना रेट जो था 5.3 रुपीस पर यूनिट था. तो उन्होंने कहा जी हम वही सारा कुछ कर लेंगे. पहले बड़े आ रहे हैं ना यूरोपियन यूनियन से.
नहीं मगर ये एटलीस्ट आम आदमी को जो किसान,
इसलिए किसान जो है उसको उन्होंने रिलीफ दी है. आज जनाब यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान के जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके लिए हम 30 मिलियन यूरोस और इनको देने के लिए तैयार हैं. यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट जेनेज लेरेसिस जो हैं वो अब पाकिस्तान को विजिट कर रही हैं और ये बात उन्होंने उस वक्त कही. उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स आए थे, उसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया है कि जितने हमने पैसे दिए हैं उसके ऊपर एडिशनल 30 मिलियन दिए जाएंगे. इसके अलावा पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशंस ने भी फ्लैश अपील की है फ्लड्स के लिए इन जनीवा फॉर 816 मिलियन US डॉलर्स. और उन्होंने कहा है जी कि ये एक रिवाइज्ड फूड रिस्पांस प्लान बनाया जाएगा जिसको के मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज शेरी रहमान और यूनाइटेड नेशंस मिलकर आगे लेकर चलेंगे. इसके अंदर जो शेरी रहमान साहिबा हैं वो जल्द ही जिनीवा में पहुंचेंगी टू अटेंड द मीटिंग इन पर्सन. इसके अलावा मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल, मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स एयाज सादिक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरन अफेयर्स हिना रब्बानी खर, ये लोग पाकिस्तान से ही वर्चुअली इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे. तो पहले तो बड़े इंक्रीज किए जा रहे हैं.
Of course, yes.
लेकिन वो पहले पूरी दुनिया से, लेकिन वो पहले किसकी जेब में जा रहे हैं ये पता नहीं है. अच्छा ठीक है, नहीं मेरा जीरो ट्रस्ट. अच्छा जी. अच्छा जनाब ISPR की आज एक प्रेस रिलीज आई थी और उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान आर्मी ने 7 टेररिस्ट जो हैं केपी के एरिया के अंदर मारे हैं. 2 डिफरेंट ऑपरेशंस जो थे वो हुए थे. पहले जो ऑपरेशन के अंदर इनको बताया गया था कि हसन खेल के अंदर एक जो है वो टेररिस्ट डेन है, जब वहां पे पुलिस की सॉरी मिलिट्री की गाड़ी जब निकली बाहर चक्कर पे तो उनके ऊपर मिलिटेंट्स ने फायरिंग की. ट्रूप्स ने उसके जवाब में जब फायरिंग की तो 3 जो टेररिस्ट हैं उनकी वहां पे डेथ हुई. उनके जब डेन में छापा मारा तो बहुत सारे वेपन्स और एम्यूनिशन जो है रिकवर किए. दूसरा जो इंसिडेंट था वो टांग के इलाके में हुआ है, वहां पे भी 4 टेररिस्टों को मारा गया है लेकिन उसके अंदर जो हैं सोल्जर्स जो हैं हमारे उनकी भी कुछ की डेथ हुई है. इन्ना लिल्लाह वइन्ना इलैहि राजिऊन. बहरहाल तो अब ISPR का कहना है कि इस इलाके को तकरीबन हमने टेररिस्टों से साफ कर लिया. हर वक्त ही आप कहते हैं फिर वो आ जाते हैं
फिर आ जाते हैं फिर साफ करते हैं.
मतलब व्हाट इज दिस है जी, एक क्वेश्चन ही है. अच्छा जी आपको पता ही है कि सुशांत सिंह राजपूत की जब से डेथ हुई है बॉलीवुड के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है और कहा जा रहा है बड़ा नेपोटिज्म दिखाया जाता है और सिर्फ अपने जानने वालों को और फिल्म स्टारों के बच्चों को आगे आगे किया जाता है. खास तौर पे करण जौहर साहब, करण जौहर साहब को बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामने था. तो आज उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा कि ये इतनी ट्रोलिंग और बैशिंग जो है बॉलीवुड के अगेंस्ट ये अच्छी नहीं है. और ये जिस वक्त ये सारा कुछ शुरू हुआ था मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसे बॉलीवुड के खिलाफ किया जाएगा. बहुत कुछ जो लिखा जाता है बहुत ही अनफेयर है और मैं तो जिस वक्त ये सारी ट्रोलिंग शुरू हुई तो आई फाउंड माई सेल्फ इन द सेंटर ऑफ सो मच ऑफ नेगेटिविटी विच इज नॉट गुड एंड नॉट फेयर अगेंस्ट मी क्योंकि मैंने कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया है. माधुरी दीक्षित साहिबा जो हैं जी वो वापस आ रही हैं फिल्मों में. उनकी जो अब नई फिल्म आने वाली है मजामा उसमें ये नजर आएंगी एक मिडिल क्लास वूमन. लेकिन इनकी जो अपसाइड डाउन हो जाएगी इनकी लाइफ, एक राज इनका जब सामने आएगा तो अब देखेंगे कि ये कैसे फिल्म चलती है. बहरहाल वो कहती हैं जी ये बड़े कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं और जब मैं जवान थी जो उस वक्त थे वो जो विमेन सेंट्रिक फिल्म्स नहीं होती थी, अब विमेन सेंट्रिक फिल्म्स हैं और जितने ज्यादा चैलेंजेस होते हैं उतना ज्यादा मजा आता है उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए. तो जो है मैं तो जो है सारे एक्टर्स इस तरह के रोल्स के बारे में, शी इज वेरी प्रिटी. या आई मेट हर इन आईफा आई मेट हर. तो जनाब ये वो उन्होंने आज किया है. और जनाब बहुत दिनों से कुछ अफवाहें आ रही थी कि रणवीर सिंह और दीपिका पाडुकोण के बीच में स्प्लिट हो गया है. ऐसी कोई बात नहीं है. लेटली कार्टियर जो आपको पता ही बड़ा हाई एंड ब्रांड है उन्होंने अपना न्यू एम्बेसडर दीपिका पाडुकोण को बनाया था. ब्लैक एंड व्हाइट में इनके शूट्स आए थे जिसमें कि इन्होंने कुछ डायमंड्स पहने हुए हैं. तो इसके ऊपर रणवीर ने ट्वीट किया था माई क्वीन डूइंग अस प्राउड, जिससे लोग जो रूमर्स उठा रहे थे वो बैठ गए. उन्होंने कहा नहीं इनके बीच में
अभी तो
पीआर चल रहा है,
अभी तक भी वो उसकी क्वीन है.
हाँ अभी तक भी क्वीन है, पीआर चल रहा है उसके बीच में. एंड जनाब यूएई बेस्ड एक पाकिस्तानी एथलीट है सिनान इशवाक खान, इसने जनाब गोल्ड मेडल जीता है अल्बेनिया ओपन टाइक्वांडो G2 चैंपियनशिप में. वैसे तो ये शारजा स्पोर्ट्स क्लब के लिए खेलते हैं लेकिन ये पाकिस्तान को इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट करते हैं और इन्होंने अपने इटालियन राइवल मैगियोर स्टिफानो को जो है सेमीफाइनल्स में और ग्रीक प्लेयर विलेजुडिस मिकियाए को हराया था और अंडर 78 वेट कैटेगरी में, और इस तरह से इन्होंने पाकिस्तान का नाम अल्बेनिया में रोशन किया. इसके अलावा जनाब जो है हमारी जो यूएस के एक एलिगेशन आई हैं सामने, यूएस सैली की अटॉर्नी जनरल सैली येट से उनके सामने एक इन्वेस्टिगेशन आई थी, एक रिपोर्ट उन्होंने उसके ऊपर भी जारी की थी, और उस पर उनको कहा गया था कि जो यूएस में जो नेशनल विमेन्स सॉकर लीग है उनको जो है लड़कियों को बहुत ज्यादा हरास किया जाता है और सेक्सुअल मिसकंडक्ट है. इनकी जो आज रिपोर्ट आई है उसने भी यही कहा है कि येस बहुत ज्यादा इमोशनल अब्यूज है, सेक्सुअल जो है वो मिसकंडक्ट है, और जो ये सब करते हैं टीम्स कोचेज अगेंस्ट द प्लेयर्स जो कि ठीक नहीं है. वो कहते हैं जी ये बड़ा डीप रूटेड है ये कल्चर सॉकर के अंदर और स्पेशली यूथ लीग्स के अंदर जिसमें जवान बच्चियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, अब्यूसिव कोचेज होते हैं. ये चीजें सारी उस वक्त सामने आई थी जब दो लड़कियां साइनेट फेरली और मना शिम जो हैं ये सामने आए थे और इन्होंने शिकायतें की थी हरासमेंट और सेक्सुअल कोएर्शन की. तो इन्होंने कहा था कि एक जो है वो डेकेड बैक था, 10 साल पहले हमारे जो कोच थे पॉल रायली उसने ये किया था. जब ये आर्टिकल इनका छपा था द अटलांटिक में इन सेप्टेम्बर 2021, रायली ने ऑफकोर्स इन सबको डिनाई किया था चार्जेस को, लेकिन फिर एज हेड कोच ऑफ नॉर्थ कैरोलाइना करेज उन्होंने जो है रिजाइन उससे कर दिया था. उसके फौरन ही बाद जो NWSL की जो कमिश्नर थी लीजा बेर्ड उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था. तो अभी तक 5 to 10 हेड कोचेज जो हैं वो, हालांकि उनके खिलाफ अभी एलिगेशन आए भी नहीं है सामने, तो उन्होंने कर दिए हैं. तो अब इसने बड़ी आंखें उठाई हैं चीजों ने और आज की ये जो रिपोर्ट भी आई है, तो क्या इसका मतलब है ये जो रिजाइन कर रहे हैं तो ये सब लोग सेक्सुअल असॉल्ट के केसेज में इन्वॉल्व थे कि नहीं थे, और अगर थे तो ये स्पोर्ट्स के अंदर भी ये गंद कैसे चल रहा है. तो आपको तो पता ही है कि
यहां नहीं है,
कनाडा के अंदर भी चल रहा है. ये तो यूएसए की है ना रिपोर्ट, ये तो दिस इज यूएस,
चाहे ये स्पोर्ट्स में हो चाहे आर्मी में हो चाहे ये
एवरीवेयर. आई एम सो सरप्राइज, आई एम सो सरप्राइज. वैसे मजे से मैंने कभी जो मर्जी आप पाकिस्तान के बारे में कह लें, हमने कभी नहीं सुना कि मिलिट्री के अंदर कभी किसी ने औरत के साथ बदतमीजी की हो.
औरत के साथ नहीं करते, आदमी के साथ करते.
तो बहरहाल जी ये तो आपने बड़ी खतरे में आप बात कही है. अच्छा जी ठीक है. तो ये अच्छा जनाब आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन थे टिम पेन, तो उन्होंने अपनी एक जो लड़की जिसको वो चाहते थे उसको कुछ सेक्सटिंग की थी. उस स्कैंडल के बाद जो है उनको फिर बड़ी उनके ऊपर बैड नेम आया, तो उन्होंने फिर क्विट कर दिया था और उन्होंने कहा था जी कि मैं अब अनफोर्सीएबल फ्यूचर के लिए मैं किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट से पीछे रहूंगा, मैं नहीं खेलूंगा. लेकिन आज जो है इनको बड़ा वो मिला, थोड़ा सा सहारा मिला, क्योंकि तस्मानिया जो स्क्वाड है जो कि फॉर शेफील्ड शील्ड उसके लिए जो ब्रिस्बेन में थर्सडे के दिन खेला जाएगा उसके लिए इनको हायर किया गया है फिर से, और ये जो है मैथ्यू वेड को रिप्लेस कर रहे हैं. ये मैच जो है इनका क्वींसलैंड टीम के अगेंस्ट है और इसमें ये सामना करेंगे अपने जो एक्स टेस्ट कुलीग्स हैं उस्मान खाजा एंड लेबुशेंग के अगेंस्ट. तो अब समझ नहीं आ रही कि वो जो सेक्सटिंग की थी जिसकी वजह से इनका इंटरनेशनल करियर बड़ा धचका खा गया था वो अब स्टैंड नहीं करते.
माफी हो गई है.
बड़ा बंदा है. अच्छा चलो ठीक है. ओ, मुझे लगता है पाकिस्तान से सीख रहे हैं अब, दुनिया ना सीख रही है. कहते हैं बड़े बंदे नहीं छेड़ना, सिर्फ छोटे बंदे पकड़ना है.
हाँ
जी बात ठीक है. ओके जी, इसीलिए देख रहे हैं आप जो मर्जी करते रहे. मैंने कभी आपका आपकी नकल नहीं की क्योंकि मुझे पता है मैं पकड़ी जाऊंगी, आप नहीं पकड़े. अच्छा जी, और जनाब आपको पता ही है पाकिस्तान की अब सीरीज जो है ट्राई सीरीज पाकिस्तान बांग्लादेश न्यूजीलैंड की शुरू होने वाली है. तो उसमें जो न्यूजीलैंड के कैप्टन है केन विलियमसन, उन्होंने कहा है जी कि ये दोनों ही टीमें पाकिस्तान और बांग्लादेश बड़ी ही टफ टीम्स हैं, टफ T20 टीम्स हैं. ओह वो टफ टीम्स हैं, 145 मुश्किल से बनाती हैं रो रो के. बहरहाल जी वो कह रहे हैं कि अब जो क्राइस्ट चर्च में अक्टूबर 7 से मैचेस शुरू हो रहे हैं, 7 से 14 तक ये मैचेस रहेंगे ट्राई सीरीज. तो उसमें कह रहे हैं जी कि हम इन दो अच्छी टीमों के अगेंस्ट खेलेंगे और ये हमें बड़ा बेनिफिट करेगी, ये कंपेटिटिव क्रिकेट होगी. केन विलियमसन का कहना था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बड़ी जबरदस्त है और उन्होंने बड़ी तारीफ उसकी की खास तौर पे. और पाकिस्तान का जो पहला मैच होएगा वो बांग्लादेश के अगेंस्ट होएगा जो ओपनर है, और उसके बाद जो फाइनल है वो अक्टूबर 14 को खेला जाएगा. तो अब देखेंगे पाकिस्तान क्या करता है इसमें. ठीक है,
पाकिस्तान न्यूजीलैंड.
यस पाकिस्तान न्यूजीलैंड
फाइनल में
न्यूजीलैंड पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जीते खेलेंगे, लेकिन मुझे लगता है शायद पाकिस्तान जीत जाए. शायद हाँ यानी मुझे लगता है 90% शायद जीत जाए न्यूजीलैंड, लेकिन 10% लगता है पाकिस्तान जीत जाए. शायद 10%
दस% दे रही हैं आप.
लेकिन दिया तो है ना मैंने, पहले तो मैं अंडा दे रही थी पाकिस्तान को ना 0%. देखें वही हुआ है ना जो मैंने कहा था कि इंग्लैंड जीतेगा सीरीज. इंग्लैंड जीता ना क्योंकि मैं आपको पहले दिन से कह रही थी कि रो रो के पाकिस्तान जीत रहा है, रो रो के आप कह रहे थे नहीं जीत तो जीत ही होती है चाहे एक रन से हुए।
हाँ, जीत जीत है।
हाँ, जीत जीत
वो है, अगर 100 रन से भी जीते तो
अब बस तो फिर बस वो अगर जीत जीती है तो फिर बस 10% भी मेरी तरफ से बहुत है पाकिस्तान की कि शायद 10% चांसेस है पाकिस्तान के फाइनल जीत जाए। अच्छा चलो ठीक है, ओके। अच्छा जनाब, अच्छी खबरें थोड़ी सी और कुछ हैं। आज मैंने कहा कल बहुत दिल दुखाया लोगों का, कल बड़े आए कहते हैं एक तो बड़ा वो आया मुझे मैसेज कहते शाजी जी आज तो तुझे बड़ा दिल दुखाया अच्छा जी आज मैंने कहा अच्छी खबरें, ठीक है जी। अच्छा अच्छी खबर ये है कि अब पाकिस्तान की जो विमेंस क्रिकेट टीम है वो T20 के टॉप के ऊपर है, ठीक है जी, क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने बांग्लादेश को 9 विकेट से हराया था सिलेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, और ये इनकी सेकेंड विन थी इन अ रो। इससे पहले इन्होंने मलेशिया को हराया था, इन्होंने जो बांग्लादेश के साथ गेम खेली वो बड़ी जबरदस्त खेली, जो पाकिस्तान की कैप्टन थी बिस्मा मारूफ उन्होंने टॉस जीता था और बांग्लादेश जो होस्ट है उसको बैट करने के लिए कहा था। डायना बेग जो थी उसने पहले ओपनर को फटाफट शमायमा सुल्ताना को आउट कर दिया, उसके बाद एक और विकेट ली। पाकिस्तान की जो दूसरी स्पिनर्स थी निदा डार, उमायमा सोहेल, सादिया इकबाल, इन्होंने भी तकरीबन 4 के करीब इन सारियों ने मिलकर विकेट्स ली और इन्होंने होस्ट को रिस्ट्रिक्ट किया 70 for 8 इन 20 ओवर्स। तो इनके अलावा जो पाकिस्तान की ओपनर्स थी मुनीबा अली, सिद्रा अमीन, उन्होंने 40 रन्स पावर प्ले में मारे। सिद्रा जो थी वो अनबीटन रही 36 of 35, और इंडिया के भी वैसे पाकिस्तान जितने ही पॉइंट्स हैं लेकिन इंडिया दूसरे नंबर पे है इसलिए कि उनका नेट रन रेट जो है पाकिस्तान से थोड़ा
जो कोच है ना उसको मैच का कोच
बनाना चाहिए। हाँ नहीं नहीं बेचारी लड़कियों ने बड़ी मुश्किलों से इस लेवल पे आई है, उतनी रहने दे
उसको
उसका भी बना दें, उसका भी बना दें
अगर वो पावर प्ले में इतना स्कोर कर सकती है तो
इन्हें भी सिखाओ जी कुछ।
हाँ जी
नलायक
नलायक।
एंड जनाब सबसे आखिरी हमारी खबर, आज आपको पता है 4th October था, 4th October जो होता है शेडी डे होता है, यानी कि वो जो शेड्स पहनते हैं, ठीक है, शेडी यानी शेडी डील्स नहीं
शेडी
शेडी डील्स नहीं, वो जो
ओनली शेडी पीपल,
ओनली शेडी पीपल विल वेयर शेडी डील्स, न्यू शेडी डील्स है जी। तो आज का दिन जो है उसको कहते हैं शेडी डे, यानी कि जो है सन ग्लासेस का डे। तो आज जो है बर्थडे जो है वो शादाब खान की भी है, 24th बर्थडे है जी हमारी शादाब खान की। तो वो अपने ये गोगले पहन के फिर रहे थे, शेड्स पहन के फिर रहे थे, तो जो इनके जो है वो साथी जो है बाबर आजम, शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज, सरफराज अहमद वगैरह, उन सब ने तो इनको मुबारक दी, फैंस ने भी दी, और ये जो लड़के थे इन्होंने कहा शेडी जानी हैप्पी बर्थडे तो इन्होंने शादाब खान को ऐसे कहा शेडी जानी देख लें मजे से,
गुड वन, गुड वन,
गुड वन है ना,
गुड वन।
पाकिस्तान में बड़ी इनोवेशन है, मैंने तो आपको पहले ही कहा था बड़े इनोवेटर्स हैं पाकिस्तानी,
ऑफ कोर्स यस। तो मैं तो एग्री करता हूं, मैं हमेशा एग्री करता हूं कि वी आर हमारी तरह
की इनोवेशन और कोई
नहीं है ही नहीं हमारी तरह की।
हाँ,
एक ही है
वन एंड ओनली
भाई, हम हमारी तरह से तो
अल्लाह ताला ने एक चंद बनाया है, एक सूरज बनाया है, एक पाकिस्तानी कौम बनाई है बस जी हाँ जी
पाकिस्तान बनाया है
बा हिंदुस्तान में लोग कह रहे हैं यूनिफिकेशन होना चाहिए पाकिस्तान के साथ।
नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए,
हमें नहीं चाहिए
नहीं।
वो मेरे मामा जी ने जो उनको बताया था, वो गए ना उधर इंडिया गए ना उधर फिर रहे थे तो वो नीचे निकले ना वो ताज से ऐसे करके वो तो वो उन्होंने कहा कि आप तो जाहिर पाकिस्तानी शक्ल से पहचाने जाते हैं ना भाई पाकिस्तानी है वो तो वो उधर शॉपिंग के निकले तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये देखना आप यहाँ पे अखंड भारत बनेगा। तो मेरे मामू ने आगे से क्या कहा उनको, उन्होंने कहा देखो पैन तुसी खबरां नहीं सुनते हो पाकिस्तान दिया, जिन्होंने अपने आप नहीं छोड़े हो तो भी नहीं छोड़े इस वास्ते पाकिस्तानियों को डर के रहना
इसके साथ ही आज के इस सेगमेंट का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है साहब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इंशाल्लाह ताला बकिया की खबरें कल होंगी आपके साथ और शहजा जी हमारे साथ होंगी यहीं पर
इंशाल्लाह।
कहा जाना है अल्लाह ने भी एक पाकिस्तान बनाया, एक चा बनाया, एक सूरज बनाया और एक शाजिया बनाई वो शाजिया हमको दे दी,
ये तिराई चली नहीं ना ज्यादा
चलिए साहब इतना ही वक्त रह गया कि मैं आपसे खुदाफिज कहूं, खुदाफिज,
थैंक यू वेरी मच, विल सी यू टुमारो
इंशाल्लाह, कल आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाइना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। रेडियो 770 AM वॉइस ऑफ कम्युनिटी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com।
कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना।
कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी
का मकसद है बस तुम्हारा साथ, लो कह दिया ये तुमसे हाथों में लेके हाथ,
हम तुम हम बन के रहे हम सफर,
शिकवा करे न कोई एक दूजे से उम्र भर,
प्यार हमारा ऐसे कि देखे ये जमाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार
कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो
तो निभाना। ना तुम मुझे सताओ,
मैं तुमको समझ जाओ, तुम मुझको समझ जाओ।
ना मैं तुम्हें सताऊं, ना तुम मुझे सताओ,
मैं तुमको समझ जाओ, तुम मुझको समझ जाओ।
चाहत ही पूजा हो, मन मंदिर हो, जान मन
दूजे के बिन एक पल भी लगता नहीं हो मन।
फिर तो जीवन बन जाएगा प्यार का तराना। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना,
कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना।
प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना।
नाजुक हल्की फुल्की लड़की है या कली कवल की।
नाजुक नाजुक हल्की फुल्की लड़की है या कली कवल की।
देख के दिल मेरा डोला, धक धक करके ये बोला।
क्या
एक यौवन उस पे सावन उस पे कुर्ती मलमल की। अरे चिंगारी भीगी देखो, भीगी देखो चिंगारी भीगी रे।
चिंगारी भीगी देखो, भीगी देखो चिंगारी भीगी रे।
और क्या, अरे रुक रुक के मुड़ मुड़ के चलना तेरा शरारत नहीं है तो फिर और क्या। कातिल तेरी इक से है इक अदा, फिसले ना दिल कैसे मुझको बता।
तंग ना करो ऐसे देखो मुझे, कोई तो दे दो ना मेरा साथ। दीवानगी है सरासर तुम्हारी, ये ऐसे नहीं बनती बात।
कैसे बनती है बात मुझको बता दे, मैं वैसे बना लूंगा रे। चिंगारी भीगी देखो चिंगारी भीगी रे।
चिंगारी भीगी देखो चिंगारी भीगी रे।
हाय
छोटा सा बच्चा समझता है प्यार। सोच जरा देख जरा मुड़ के ओ यार, छोटा सा बच्चा समझता है प्यार। कितना उम्र में है वो जूनियर, कितनी बड़ी बात कर गया यार।
मैं जानती हूँ मिले तुम सभी है ये मुझको लुभाने की चाल।
चाल
ए बाबू तेरा चलेगा नहीं जा, तू ऐसे गलेगी न डाल।
अरे कैसे गलती है डाल मुझको बता दे, मैं वैसे गला लूंगा रे। चिंगारी भीगी देखो, भीगी देखो चिंगारी भीगी रे।
चिंगारी भीगी देखो, भीगी देखो चिंगारी भीगी रे।
चल
चिकनी सड़क है गोरी जरा संभल,
पटरी पे चल।
मैं जानती हूँ मुझे ना बता, तुझसे तो ज्यादा है मुझ में अकल।
तुझको लगेगी अगर चोट तो दर्द मुझको भी होगा ना।
ओ राजू तूने ये क्या कह दिया, हो गया दिल दीवाना मेरा। अरे बात भी बनेगी अब दाल भी गलेगी, तूने दिल मेरा जीता है।
हाय चिंगारी देखो भीगी देखो चिंगारी भीगी रे।
चिंगारी भीगी देखो, भीगी देखो चिंगारी भीगी रे।
हाँ नाजुक नाजुक हल्की फुल्की लड़की है या कली कवल की, देख के दिल मेरा डोला धक धक करके ये बोला। एक यौवन उस पे सावन उस पे कुर्ती मल मल की चिंगारी भीगी देखो, भीगी देखो चिंगारी भीगी रे।
चिंगारी भीगी देखो, भीगी देखो चिंगारी भीगी रे। चिंगारी भीगी देखो, भीगी देखो चिंगारी भीगी रे। चिंगारी भीगी देखो, भीगी देखो चिंगारी भीगी रे।
क्या
गया एक मस्त हवा का आता जाता झोंका। अपने दिल को मेरे दिल ने मुझको रोका, प्यार है क्या एक मस्त हवा का आता जाता झोंका। जान गवा बैठा जिसने खेला ये खेल दिलों का, ओए राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता है। अच्छी लगती हैं बरसातें, पहले पहले प्यार की अच्छी लगती हैं बरसातें, उसके बाद न पूछो कैसे कटती हैं रातें। रास्ते में करियो करियो दिल टूट जाता है, चाहत की बात ना करियो डरियो दिल टूट जाता है। अपनी जान भी हो जाती है चीज पराई, दिल में बसने वाले अक्सर होते हैं हर जाई। ओ प्यार में अपनी जान भी हो जाती है चीज पराई, दिल में बसने वाले अक्सर होते हैं हर जाई। हमने भी ये तब जाना चोट जिगर पे खाई, ओए राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता है, चाहत की बात ना करियो डरियो दिल टूट जाता है। दिल दीवाना तू ना आना, दिल की बातों में सोच ले,
दिल दे दिया है जान को।